सब सेकंड पे बैठेंगे, इधर बैठो इधर, हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, इसलिए आपको बुलाया। दूर बैठने से हमें लेक्चर करना पड़ता है, लेक्चर नहीं हम करना चाहते। क्लास माना क्या होता है? दूर ध्यान। बाबा फिर से हमारे पास आने वाले हैं। कब आएंगे? 24 को आएंगे ना, या हम बाबा के पास जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। बाबा हमेशा एक होमवर्क हमें देते हैं, आज उस पर ही हम चर्चा करेंगे। पता नहीं गीत बजाने वाले को कहाँ से संकल्प आ गया, इसने वही बजा दिया। बताएगा मुझे ऐसे आज कि बाबा सदा कहते हैं सदा खुश रहो। भगवान को अच्छा ही नहीं लगता कि उसके बच्चे भी खुश नहीं रहते। लोग कहेंगे ना उसे, पहले अपने बच्चों को खुश करो फिर बात करना हमसे, कहेंगे नहीं? बड़े भगवान बने फिरते हो, तुम्हारे बच्चे तो खुश रहते नहीं, ठीक बात है ना? खुशी बहुत बड़ा खजाना है, इसको खजाना समझना ये बुद्धिमानी है। किसी मनुष्य के पास बहुत धन दौलत हो लेकिन खुशी ना हो, कैसी रहेगी वो धन दौलत? ठीक बात है ना? दिखाई देता है, समाचार आते हैं बहुत पैसे वाले सुसाइड कर लिया बच्चे ने, खुश नहीं थे, संतुष्टि नहीं थी, अशांति बहुत थी, नींद नहीं आती थी, गए। तो खुशी को बहुत बड़ा खजाना मान ले। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, लोग समझते हैं सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, सफलता खुशी की चाबी है, सफलता मिलेगी तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, खुशी ही सफलता की चाबी है। जिस घर में खुशी का माहौल हो वो घर कैसा होता है? माताएं बताएंगी, बोलो। मिलते हैं आपको कुछ ऐसे घर जिसमें खुशी खुशी हो? या गड़बड़ है आजकल? बहुत गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ हो गई है आजकल। आज भी एक अखबार में एक लेख था, मैं पढ़ रहा था, मैं अखबार उसी के लिए मंगाता हूँ, एक बीच में अच्छा लेख आता है कभी बड़े काम का, युवकों की बदली हुई राह, कुछ ऐसा हेडिंग था। तो युवक किस तरह गलत राह पे जा रहे, बहुत कम युवक है तो सदमार्ग पर है, बाकी सभी कोई बुरे संग में आ गया है, कोई इंटरनेट के कब्जे में आ गया है, कोई कई वासनाओं के वश हो गए हैं युवक। तो उससे तब तो उन्हें पता नहीं चलता, तब तो आनंद लेते, वाह हम जैसा कोई नहीं। और जब थोड़ा सा ही बड़ा होते हैं तो पता लगता है जीवन का सुख तो चला गया, अब तो जीवन में निराशा है, अब तो मरने के अलावा कोई तरीका नहीं शांति का। उन्हें नहीं पता मरने के बाद शांति नहीं मिलती, जिसको जीवन में शांति नहीं मिली उसे मरने के बाद मिलेगी? जो जीवन में मुक्त नहीं हुआ वो मृत्यु के बाद मुक्ति को कैसे पाएगा, इसका क्या भरोसा? इसलिए बाबा हमें कहते हैं यही मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति। तो आज हम खुशी पर एक प्रैक्टिकल चर्चा करना चाहते हैं। हम माताएं आगे बढ़ना, सभी लेट आने वाले आगे आ जाओ, लास्ट तो फास्ट माताएं दर दर के आ रही, हमें कोई देख न ले, देर से आ रहे। तो खुशी एक बहुत सुंदर विषय है। ज्ञान योग के मार्ग पे चलने के बाद जिसके जीवन में खुशी आ गई वो पद्मा पदम भाग्यवान, और जिसके जीवन से खुशी चली गई कोताही चल रहे ले आप उसे। हम कैसे खुश रहेंगे, और एक प्रैक्टिकल चर्चा अब हमें करनी है, जिसके लिए मैंने बहुतों को आगे बुलाया। भाई तो बहुत आगे अच्छे अच्छे। खुशी क्यों क्यों गुम होती है, बहुत प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। जैसे गीत में था, किसी ने कुछ खा तो क्या हो गया, खुशी क्यों चली गई। एक है कि दूसरों के शब्द हमारी खुशी को छीन लेते हैं। सोचो अब, मैं कुछ बातें बता देता हूँ, फिर आपको सोचना है। मुझे क्लास कराना चाहते हो नोट कर ले, काम आएंगे आप सबको। हमसे कोई गलती हो जाए खुशी चली जाती है, किसी ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन हो जाए खुशी चली जाती। मान लो हम सवेरे नहीं उठे, खुश रहेंगे? उठते लगे अरे भाई अमृत वेला मिस हो गया, उठते ही खुशी चली गई। पहला ही संकल्प अपने से नाराजगी का हो जाएगा, तो कोई पाप कर्म हो जाए किसी से, ईश्वरीय मर्यादाओं पर न चले, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई गलत शब्द बोले, इनसे खुशी जाती है। अब आप बताएंगे, अब तो चिंतन चल गया होगा ना। बोलो, माताओं की खुशी कहाँ जाती है? पहले माताओं से, फिर कन्याओं से, फिर कुमारों से। माताओं की खुशी कौन छीनता है? क्यों, माताओं को पता नहीं क्या? बच्ची क्या उमंग से उत्तर दिया बच्ची। आ जाओ बैठो, आगे बैठो, ये माताएं खुश नजर आ रही ज्यादा। तो माताओं की खुशी छीनते हैं बच्चे, और बच्चों की खुशी छीनते हैं माताएं। ऐसा नहीं, इसलिए मैं बच्चे से पूछा, सबसे छोटी कन्या रहती है। तो खुशी आपसी व्यवहार, आपसी संबंधों की कड़वाहट से जाती है। इसमें एक बहुत अच्छा सिद्धांत, कामनाएं हमारी खुशी को खत्म कर देती हैं। माँ चाहती है मेरा बच्चा 8 बजे घर आ जाए, जरूर चाहेंगे ना भाई, घर में हो सब लोग। बच्चा आता है रात के 12 बजे, माँ बाप रोज समझाते हैं, नहीं मानता, उल्टा लड़ाई करता है, तो खुशी तो जाएगी ना। ये शुभ कामना है ना बच्चे के लिए, इनका जीवन अच्छा हो, और बच्चे उस बात को मानते नहीं। बच्चे रहे, माँ बाप को क्या पता, जब ये छोटे थे ये भी तो ऐसे ही करते होंगे, गए अपने फ्रेंड के साथ जहाँ था, टाइम वेस्ट, पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं। तो कामनाएं, अब इसको सूक्ष्म रूप पे देखो, एक कन्या को खुशी नहीं रहती। मेरे पास लाई उसकी दीदी, रोने लगी, क्यों खुशी नहीं रहती? मुझे दीदी प्यार नहीं करती। और दीदी वहीं बैठी, वो कहती भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत दीदी मुझे प्यार नहीं करती। तो क्या करती है? उसको प्यार करती है। मेरे आगे परसों की बात है, रोने लगी। मैंने कहा भाई इन कन्याओं को अब विशाल दिल बनना पड़ेगा। मैंने उसको कहा, हंसाया, तुमको पता नहीं तुम्हें संसार को खुशी बांटनी है, तुम आधार मोड़ दो, पता तो है, पर दीदी को तो मुझे प्यार करना चाहिए ना। और दीदी उसे देख रही कि मैं इसे बहुत समझाती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लो, सेवा करो, सेवा बहुत करती है, सेवा खूब करती है। कहा इससे ज्यादा सेवा इस सेंटर में कोई नहीं करता है, ये और किसी को करने ही नहीं देती, सारा काम कर लेती है, पर दीदी प्यार करे, उसे ना करे, मुझे करे। और समझ रही है, मुझे तो करे ये तो ठीक है, पर उसे भी ना करे। ये कंपैरिजन, इसके पीछे छोटी सी ईर्ष्या, और ये छोटे विचार, इनसे हमें ऊपर उठना होता है, बहुत ऊपर उठना है। कौन हुए हम? पूर्वज, सृष्टि के आधार मूर्त, कल्प वृक्ष के मास्टर बीज, जिनकी खुशी का प्रभाव सारे संसार में फैलता है। हमारे खुशनुमा चेहरे क्या करते हैं? देवताओं को बाबा की ओर आकर्षित करेंगे, देवकुल की आत्माओं को निकालना है ना हमें, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है, उन्हें सब को निकालना है। देखो इस खुशनुमा चेहरे का एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने बताया भी है पहले ही उदाहरण, लेकिन जो समझाते हैं उनको बहुत अच्छा काम आएगा। यही मधुबन में बहुत साल पहले जब हमारे आश्रम छोटे से हुआ करते थे, जब हमारा नाम संसार में नहीं था, अब विरोध ज्यादा था, तो अहमदाबाद से एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर उसने कोर्स किया वहाँ पर, और जब उसे बताया कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की पालना होती है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार ब्रह्मचर्य की पालना करना माना हमारी प्रकृति के विपरीत हम जा रहे हैं। तो कहा प्रकृति के विपरीत कोई जाएगा तो उसके चेहरे पे टेंशन होगी, सिकुड़न होगी, वो हंसना तो भूल ही जाएगा। उसने ऐसा सोचा, थोड़ा बहुत कोर्स किया, ज्ञान लिया, और फिर बहने उसको ले आई यहाँ मधुबन में। उन दिनों हमारे यहाँ कोई ज्यादा प्रोग्राम भी नहीं चलते थे, शिविर केवल चलता था, पता नहीं शिविर था नहीं, उसको शिविर में लाया किसमें मुझे भी याद नहीं है। उसने यहाँ सबको देखा, वो मनोविज्ञान का प्रोफेसर था, सब कुछ देखता था ध्यान से कि ये बहने भी हैं, भाई भी हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो बात भी करते हैं ब्रह्मचारी और बात कर रहे हैं। उनके वहाँ तो स्वामीनारायण वाले हैं ना सन्यासी, मुंह नहीं देखना नारी का। मैं कहता हूँ मुंह क्यों देखते हो, आत्मा को देखो ना, ये तो उन्हें आता नहीं, तो मुंह देखते क्यों, आत्मा है ना सर, आत्माओं को देखो, कौन नर और कौन नारी। तो उसने देखा सब मुस्कुराते हैं यहाँ, तो यहाँ जैसी खुशी तो अहमदाबाद में कहीं देखी नहीं। तो फिर मेरे से मिलाया था उसको, बड़े थे मेरे बैर भाई ये वो, उन्होंने सबने बताया उसको, हमारा पवित्र जीवन जबरदस्ती का नहीं है, हमें बाबा ने याद दिला दिया तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तो देव संस्कार इमर्ज होने लगे, पवित्रता वरदान बन गई, आनंद बन गई, सुख शांति की जननी बन गई। तो दुनिया वालों के ब्रह्मचर्य में और बाबा के में रात दिन का अंतर, उन्हें पता ही नहीं इस चीज का, जबरदस्ती कर रहे हैं, मुश्किल फील कर रहे हैं। इसलिए वेदों में भी लिख दिया ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या, और यहाँ ब्रह्मचर्य से ही शुरू हो रही है सारी आगे की तपस्या, बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। तो हमारी पवित्रता ने हमें मुस्कुराना सिखा दिया, सिखाया या नहीं बहनों को? क्यों खुश हैं बाबा के बच्चे? क्योंकि बहुत सारी वासनाएं खत्म हो गई, जीवन सुखों से भर गया, ठीक है ये बात। तो हम बहुत खुश नसीब हैं, हमारे चेहरों की खुशी देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करके बाबा के पास लाएगी। इसलिए छोटी मोटी बात से अपनी खुशी को गंवाना नहीं है, जब कोई बात हो जाए तो अपने से बात करना, ये बात बड़ी या मेरी खुशी बड़ी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने की बात है स्वयं को, और ये अपने को पक्का कर देना, मैं खुश रहूंगी तो ये बात खत्म हो जाएगी। दोनों बातें, इन बातों से बड़ी तो मेरी खुशी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इन बातों की कीमत तो दो पैसे भी नहीं है, मेरी खुशी कीमत करोड़ों रुपए है, इसलिए मुझे दो पैसे की बात से करोड़ों का नुकसान नहीं करना है, साथ में मैं खुश रहूंगा तो बातें खत्म। मुस्कुराइए, बात बोलो, परिस्थितियां भगाइए, निकलो अपने पास, मुस्कुराइए, परिस्थितियों को भगाइए। हम बहुत सोचते हैं तो हर छोटी बात बड़ी परिस्थिति नजर आती है, हम कुछ ना सोचते हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम अपनी खुशी को खोए नहीं। दो बात पे ध्यान देंगे, इच्छाएं और कामनाएं कम करते चले। जितनी कामनाएं ज्यादा होंगी खुशी कम। खुशी को बढ़ाना है तो कामनाओं को कम करना होगा। दूसरी इच्छाएं, वस्तुओं की इच्छा, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। एक चीज है आवश्यकता, भाई ठंड हो गई तो हमें गर्म कपड़े चाहिए, उसको इच्छा नहीं कहते, वो आवश्यकता है। लेकिन इच्छा है कि इसने अच्छा स्वेटर पहना, मेरा दिल ऐसा है, मेरे पास इसे अच्छा होना चाहिए, सब मेरा स्वेटर देखे, ये इच्छा हो गई है। तो कामनाओं को भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। सेवा की हमने और साथ में कामना रख ली, कोई मेरी सेवा की महिमा तो करे। यहाँ तो कोई भी नहीं कुछ कहता, सात दिन सेवा करके सो जाते हैं, कोई कहता ही नहीं बहुत किया, खुशी नहीं है। सेवा की किसके लिए की? बाबा की सेवा की। उसे बताया ना, वो वाह वाह कर रहा है ऊपर से, वाह मेरे बच्चे वाह। तो उससे वाह वाह चाहिए या मनुष्यों से? बाबा से है ना हमारा नाता, वो तो बहुत खुश होता है हमें देखकर। उसके बच्चे सेवा करते हैं, वो भगवान आनंदित हो जाता है। शास्त्रों में दिखाया ना, शंकर जी डांस करने लगे हैं ऊपर, बाबा भी आनंद में आ जाता है, वाह मेरे बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म कामनाएं हमारे मन में रहती है, इनका हम निवारण करें। हॉस्पिटल वाले बैठे है, देखो एक कमरे में आप दो रहते हैं, तीन रहते हैं, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा, खुशी चली जाती है। अब मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ उन बातों की, खुशी चली जाती है। एक होता है सर्दी का मौसम आ गया, दरवाजा खोल के बाहर जाता है, बंद नहीं करता, दूसरों को ठंडी हवा आती रहती है, अंदर अंदर कहीं कैसा आदमी है, बुद्धू है मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, कैसा है, आने दो इसको ठीक करूंगी। अब जब वो आएगा तो उसको ठीक करने में लग जाएंगे। बहुत अच्छा होता चुपचाप उठ के दरवाजा बंद कर देते, सो जाते, संकल्प खत्म। कौन सी बात अच्छी है? संकल्प चलाते रहना और उसे ठीक करना, कितना बड़ा झंझट हो जाएगा। और चुपचाप दरवाजा बंद कर देना, उसे बता देना भाई दरवाजा बंद कर दिया करो, ठंडी हवा आती है। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है ना, कहीं कोई दूसरों का ख्याल नहीं होता है संगठन में, और जो आत्मा दूसरों का ख्याल नहीं करती उसको क्या नुकसान होगा? उसमें राजयी संस्कार नहीं है। राजयी संस्कार माना राजा अपनी प्रजा के लिए माता पिता है, वो उनकी हर चीज का ध्यान रखेगा। और जिसको ये है मैं केवल, मैंने पेट भर लिया ना, आनंद है जीवन में, जैसा सोचता है उसमें राजा ही संस्कार नहीं है। तो संगठनों में रहते हुए आप सभी भाई बहन, देखो माताओं के कमरे तो बड़े बड़े हैं, एक साथ रहती होंगे ना, कितने कितने रहते हैं एक साथ? 16 बहुत हो गए ना, माताएं 16, आप 16 रहे और चुपचाप सो जाए, चमत्कार हो जाएगा ना, सचिव आ जाए जल्दी। तो कोई बोलता होगा, कोई लाइट जलाता होगा, कोई खड़ाके वाले भी होंगे, ऐसे में भी खुश रहना बड़ी बात हो गई ना। अकेला व्यक्ति और सोने वाला भी कैसे भी सो जाए, कब भी उठे कोई पूछेगा नहीं। तो संगठनों में देखिए बाबा ने ये सब क्यों किया, कि भाई सब इकट्ठे रहकर एक होना सीख ले। इन संगठनों से हमें गुणवान बनने की कला आती है, हमारे अंदर सहनशीलता आती है, दूसरों की बातों को भी सुनना समझना, उन्हें सहयोग देना, उनका भी ध्यान रखना, ये कला आती है। ऐसे तो नहीं ना सब सो गए और एक माता आई रात के 11 बजे और लाइट जलाई, मुझे तो कपड़े बदलने हैं, लाइट चाहिए, अंधेरे में कैसे, तुम सब जगे जग जाओ, मुझे क्या इससे लेना देना, ये कैसा लगेगा सबको, इसे दुआएं भी नहीं मिलेंगी, सबके मन में उसके प्रति उल्टे संकल्प चलेंगे, ये कैसी आत्मा कहाँ से आ गई, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि सब सोए हैं, चुपचाप सो जाऊं आके। दूसरों का ध्यान रखना ये राजयिक गुण है, दूसरों को संतुष्ट करने का संकल्प रखना ये राजयिक गुण है। आज कोई मेरे से ज्ञान स्वरूप में बात कर रहा था भाई, कोई कोई चीज लेने आ रहा था और दे रहे थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा, तुम तो सबको संतुष्ट करते हो। तो उसने कहा अरे भाई हमारा क्या है, माल सब बाबा का, बच्चे सब बाबा के, हमें तो केवल उठा के देना हो रहा, उससे हमें दुआएं मिल रही हैं। लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं आता कि भगवान के माल से दूसरों को सुख दे दे। उन्होंने भी समझ लिया है मेरा है, और जिसने प्रभु के इन खजानों को मेरा समझ लिया उसने मेरा सब कुछ गवा दिया। ये याद रखना है, इसलिए हम निमित्त हैं। बाबा ने जो भी कार्य हमें दिया है दूसरों को सुख देने के लिए दिया है। ये सारे बहुत अच्छे माँ बाप हैं। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा या वत्सों से कहा, हे वत्सों इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें मन इच्छित फल देंगे। बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ लोग मुश्किल ही समझेंगे। श्री बाबा ने यज्ञ रच कर हम सब ब्राह्मणों को देकर कहा, हे बच्चों जो देवकुल की आत्माएं आ रही हैं, इस यज्ञ से तुम उन्हें संतुष्ट करो, वो यज्ञ को भरपूर करेंगे, होगा ना। तो हम सभी सबको संतुष्ट करना अपना ध्येय बना लें, लक्ष्य बना लें, खुश करें सबको। जो मनुष्य खुशी बांटता है खुशी कई गुना होकर उसके पास आ जाती है, और जो मनुष्य दूसरों की खुशी छीनता है वो कभी खुश नहीं होगा। मुझे लगता है द्वापर युग के बाद भी वो खुश नहीं रहेगा, और संगम पे हम देखते हैं वो खुश नहीं रहते। जिस दिन परीक्षाएं आने लगती हैं जीवन में उनका सब कुछ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए खुशी एक गुण भी है लेकिन इसमें शक्ति भी बहुत है, खुशी का बल भी बहुत है। जिसके पास खुशी होती है उसकी अनेक बीमारियां सहज ही समाप्त हो जाती हैं, और जो खुश नहीं रहते वो बीमारियों के शिकार हैं। ध्यान देंगे ये बात, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है जिसको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, सच्ची कहानी सुना रहा हूँ बिना नाम लिए, यहाँ वो नहीं है, बहुत अच्छा पद पोजीशन है लेकिन मानसिक टेंशन के कारण, नेगेटिव फीलिंग्स के कारण शरीर अनेक बीमारियों ने जकड़ लिया, आयु थोड़ी सी, आधा भी जीवन अभी नहीं बीता है, यंग, अनेक बीमारियां लग गई। डॉक्टर ने यही कहा मन को खुश कर लो बीमारियां विदाई ले जाएंगी। उन्होंने दर्शकों को देखा फिर मुझे बताया उसको बाहर भेज के सिखाओ, मन खुश कर लो बीमारियां भी भाई ले जाएगी, ऐसी चीज है। इसलिए हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छी चीज, हमें स्वयं को सेंसिटिव नहीं बना देना है। सेंसिटिव माना नाजुक, बहुत नाजुक, फटाफट सब कुछ सुन के इधर चले जाना, बुद्धि में समा जाना, ब्रेन उसे प्रभावित हो जाए, खुशी चली जाए, सोचते रह जाए ये ऐसा क्यों हो रहा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं लोगों को कहा करता हूँ अमावस की रात हो, चार ओर अंधकार छाया हुआ हो, एक व्यक्ति घर में बैठा परेशान हो रहा है अंधेरा क्यों आया इतना, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्यों इतना गहरा अंधेरा हुआ है, चांद कहाँ चला गया, आज होगा कुछ होगा, है ही अमावस, सबको पता है गहरी रात होगी, काली रात होगी, दीपक रोशनी जलानी ही पड़ेगी, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, परेशान होने से रोशनी नहीं आ जाएगी। तो कलयुग में जो कुछ हो रहा है वो तो होगा ही, सब कलयुग में सतयुग तो है नहीं कि सब देवता मिले हैं, कोई झूठ न बोले, सब ईमानदारी से काम करें, करप्शन हो ही नहीं, पाप कोई न करे, सब एक दूसरे से प्यार रखें, होगा ये होता तो भगवान क्यों आता है यहाँ, हम सब भी वैसे रह जाते बाबा से मिले बिना। तो ये सब जो कुछ हो रहा है इसे हम स्वीकार करके अपने को खुश रखें। इसमें ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत सुंदर अनुभव कराएगा। आज की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मुरली से। मेरे अंदर बहुत संकल्प होता था कई बार कि इस युद्ध को महाभारत युद्ध क्यों कहते हैं, भाई वर्ल्ड वार होगी, संसार का विनाश होगा, इसे महाभारत क्यों कहा गया, भारत से इसका कनेक्शन है क्या। आज बाबा ने उत्तर दिया मुरली में, किसने यह कैच किया है, बहुत अच्छा, जिन्होंने कैच किया वो बुद्धिमान है। ये विनाश तो हो गए, जैसे किसी के भी घर में ज्यादा झगड़ा हो जाए ना तो कहने में क्या आता है, और तो उनके घर में महाभारत हो गया। मान एक बड़ी चीज को महाभारत का नाम दिया जाता है, और भारत से इसका कनेक्शन ये हो गया कि भारत में भगवान ने ये महान यज्ञ रचा और इससे ही विनाश ज्वाला प्रकट होगी, संसार का विनाश होगा। अरे और बहुत सुंदर बात कही, या तो योग अग्नि से विक्रम विनाश कर लो, नहीं तो तुम्हें अग्नि में जलना पड़ेगा। आज प्रभु जी गर्म होके बैठे थे, मैं सोचा आज तो पूरा डंडा लिए हुए हैं, ये ठीक हो जाओ, नहीं तो सीधा करने वाला हूँ मैं तुम्हें। या तो योग अग्नि से विक्रम विनाश कर लो, नहीं तो तुम्हें अग्नि में जलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है ना, बाबा सावधान करते हैं। और ये अग्नि चिंताओं की अग्नि है, ये अग्नि जो मानसिक कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, ये सब अग्नि है ना, जलती है, देह भी जलता, आत्मा भी जलती है, मन भी जलता है, बुद्धि भी जलती है, सारी सुख शांति नष्ट हो जाती है। तो हम सभी अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करें और इतने सेंसिटिव न बने, नाजुक न बने कि हर चीज हम पर असर डालने लगे, मन में क्यों ही उठता रहे, जिसके मन में क्यों उठता रहेगा, बाबा क्या कहते हैं क्यों के लिए, ये क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहेगा, और जिसके साथ जाएगा उसको भी टेढ़ा कर देगा। बहुत क्वेश्चन लोगों के उठते हैं, यज्ञ में भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये 20 साल से ज्ञान में चल रहे फिर भी ये सुधरे नहीं, हमने सोचा था हम ही बिगड़े हुए, ये तो 20 साल वाले बिगड़े हुए हैं। अनेक क्यों उठते हैं मनुष्य के मन में, ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, और बाबा ने कहा क्यों नहीं। बहुत अच्छे शब्द हैं, मैं सोचता हूँ कि बाबा हमें कितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। याद होंगे आपको बाबा के शब्द, न कोई क्वेश्चन उठे न आश्चर्य हो, ये है संपूर्ण साक्षी भाव। आश्चर्य भी नहीं, आश्चर्य तो हो जाता है ना, ये ऐसा हो गया, होता है सबको हो जाता है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को हम इतना गहराई से जान लें, जब बाबा की ये बात मुझे याद आती है तो मैं भी सोचता हूँ कि इसकी गहराई को शायद मनुष्य तो न समझ पाए, कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। मैं भी सोचता हूँ ऐसे ऐसे केस होते हैं ना, यही सत्य है, जो इसको समझना तो बड़ा मुश्किल था है। भगवान ने कहा इसलिए है तो ठीक बात, पर क्या सत्यता है इसमें, ये क्यों हुआ, ये समझना, क्योंकि कर्मों की हुई ये गति को तो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता ना। किसी के साथ जो कुछ हुआ उसने पीछे क्या किया है वो तो कोई मनुष्य और नहीं जान सकता, लेकिन ये बिल्कुल साफ नजर आता है बाद में जब दिखाई देता है, पता चलता है कि इस कर्म के कारण इसको इस फल से गुजरना पड़ा, तो समझ में आता है बिल्कुल ठीक बात है, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। तो खुशी को कायम रखना हमारा अपने हाथ में हो जाए, न हम अपनी खुशी को धन के आधार से महसूस करें, न सांसारिक प्राप्तियों के आधार से, न बहुत अच्छे भोजन के आधार से हमारी खुशी हो, किसके आधार से? ज्ञान योग बाबा सूक्ष्म हो, हमारा अपना चिंतन हमें अतिंद्रिय सुखों में रखता हो, हमारी अपनी योग की स्थिति हमें आंतरिक खुशी प्रदान करती हो, हमारी अपनी सेवाएं हमें खुशियों के झूले में झुलाती हो, सेवाओं को भी हम ऐसा स्वरूप दें कि सेवाएं हमें आनंदित करें, सेवाएं हमारी खुशी छीने नहीं। और सेवाओं में जो साथ साथ काम करते हैं, दो लोग काम कर रहे हैं साथ, तीन पांच आठ दस, सबको आपस में सेवा करते हुए किससे बचना चाहिए? टकराव से। और ये याद रखना है, विशेषकर यज्ञ में जो आत्माएं आप सभी सेवा करने आती हैं, सुख पाने आते हैं ना, अपना घर छोड़ के सुख पाने आते हैं ना, तो हमसे कोई डिस्टर्ब ना हो। सोचो एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत सुखों की कामना से आया है और हमारे किसी व्यवहार से वो डिस्टर्ब हो गया, उसको सुख नहीं भाता, वो सिर पकड़ेगा ना, वहाँ भी दुख था यहाँ भी दुख है, क्या मेरा भाग्य है, उसका बोझ अपने पर आ जाएगा। इसलिए याद रखना है, हमारे इन स्थानों पर आत्माएं सुख लेने आती हैं, हमें उसमें सहयोग देना है। एक माता की कहानी में सुनाया करता था पहले ही, मधुबन में जब मैं था तो सेवादारियों को मुझे संभालना होता था, तो एक माता आई सेवा में, कहा मैं दो चार मास रहना चाहती हूँ, मुझे घर में बहुत कठिनाई है। मैंने पूछा क्या कठिनाई है? कहा मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं है, दो बहू आ गई हैं, वो मुझे बहुत तंग करती हैं। मैंने उसको हंसा, तुम्हें तो बहू का मुँह देखना चाहती थी ना, अब देख लिया ना मुँह कैसी है बहू, देख तो लिया, और क्या करूँ, ये तो इच्छा होती है ना, बच्चों की शादी हो, बहू आए ले जा जाए, हम सुखी रहेंगे। कहा उन दोनों ने मुझे बहुत अशांत कर दिया है, मैं यहाँ बाबा के घर आई हूँ, दो चार मास मुझे रहने की छुट्टी दो, मैं सुखी हो जाऊँ, शांत हो जाऊँ। मुझे पता था, मैंने कहा रो, तो वो 15 दिन रही होगी, मेरे पास फिर आई, भाई जी मैं तो जाती हूँ, मेरे भाग में शांति नहीं है, यहाँ अभी मुझे कोई शांत नहीं रहने देता। मैंने पता किया क्यों अशांत होती है वो, उसके जो साथ रहती थी माताओं से पता किया, तब जमीन पे सोते थे सब, तो कोई माता स्नान करके आ रही है, उसके बिस्तर को पैर लग गया, उसने लड़ाई शुरू कर दी, मेरे बिस्तर को क्यों छुआ, लड़ाई शुरू। माताएं होती है कोई गांव की होती है, अपना तौलिया उसके बिस्तर पे रख दिया जो नहा के आई थी, लड़ाई महाभारत शुरू, ये वही महाभारत हुआ, महाभारत शुरू, अपना गंदा तौलिया मेरे बिस्तर पर क्यों रखा, तुम सब ऐसे ही हो, तुम्हें मेहनत नहीं अकल नहीं। क्यों सुनाई मैंने आपको कहानी? कोई किसी को अशांत नहीं करता, अशांत होता है मनुष्य अपने खुद के स्वभाव संस्कारों से। तो उसको उसकी बहू अशांत नहीं कर रही थी, सच्ची बात ये होगी कि ये उनको परेशान कर रही होगी, लेकिन इसे लगता है ये मुझे अशांत कर रही है। हमेशा ध्यान देना है, अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हमें अपने स्वभाव को मधुर बनाना ही पड़ेगा, सॉफ्ट स्वीट सरल, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। लेकिन एक बात बस जीवन में ध्यान रखनी है, मैं सत्य प्रेमी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य को पसंद करता हूँ, लेकिन दूसरे थोड़े वैसे होंगे, ये ध्यान रखना है। मुझे सबसे प्यार से बोलना अच्छा लगता है ये मानता हुई, लेकिन सब थोड़ा ही ऐसे होंगे। मैं अपना काम परफेक्ट करता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट करता हूँ, जो सेवा मुझे दी गई उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन सब थोड़ा ही ऐसे होंगे। इसलिए अपने गुणों के कारण दूसरों के अवगुणों को देखना और डिस्टर्ब रहना ये भी गलत है, इससे खुशी चली जाती है। हम अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी अच्छे हों ये कामना तो अच्छी है, पर वो तो उनके हाथ में है ना, वो कितने अच्छे हों ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो अपने चिंतन को सुंदर करना है, चिंतन जितना पॉजिटिव होगा शुभ होगा उतना ही जीवन सुंदर होगा, खुशी हमारी सदा ही कायम रहेगी। और अगर हम अपनी एनर्जी को व्यर्थ में समाप्त कर देते हैं, सोचना है व्यर्थ में कोई बहुत रहे और वो चाहे मैं बहुत खुश भी रहूं, ये नहीं हो सकता। जो मनुष्य व्यर्थ में रहता है वो कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि व्यर्थ में रहने से उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और सामने जब बातें आती हैं तो उससे सहन नहीं होता, वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, खुशी लंबे काल तक चली जाती है। संसार में ऐसे समय पर हम पहुंच गए हैं। कैसे समय पर पहुंच गए, मैं इस बात के लिए सबको सावधान कर रहा हूं आजकल, सब ध्यान से सुन लें। ये वो समय आ गया है जब सभी आत्माओं में विकर्म विकार और निगेटिविटी गंदगी जो कुछ भी आत्मा में है वो ब्रेन में भी होती है मनुष्य के मस्तिष्क में, वो सब अब इमर्ज होने लगी है। हर व्यक्ति की क्योंकि सफाई होगी आत्मा की, बुद्धि की सफाई होगी, मन की सफाई होगी, ब्रेन की सफाई होगी, इसलिए सफाई होने का प्रोसीजर प्रारंभ हो गया है। जैसे शहर में बहुत कूड़े का ढेर जमा हो गया और 6 माह से म्यूनिसिपैलिटी ने उठाया ना हो, जम गया वो, उसमें घास भी उग गई, अब म्यूनिसिपैलिटी वाले उसे उठाने आए, वो 10 ट्रक माल है, वो भरेंगे तसलों में ट्रक में डालेंगे, चारों ओर क्या फैलेगी, गंदगी फैलेगी। सबने अपने अपने अंदर तो गंदगी का ढेर जमा किया है, अब उसकी सफाई का समय आ गया है तो ब्रेन में निगेटिव एनर्जी पहुंच रही है, इसलिए बातों की खुशी नष्ट होती जा रही है। संसार में ये आप तेजी से देखेंगे, मैं 3 माह से इसको महसूस कर रहा हूँ और अगले 1 साल में बहुत बढ़ जाएगा काम और 3 साल बहुत भयानक हो जाएंगे। अब कोई किसी को सजा दे ये सब कुछ छोड़ दो, अब व्यक्ति को सजा स्वतः ही मिलेगी, जिसमें कोई किसी को शिकायत ही नहीं कर सकता। कोर्ट से कोई पैसे दे के छूट जाता है, पुलिस को भी पैसे दे के कोई अपने वश कर लेता है, लेकिन ये जो अंदर से सजाएं मिलेंगी इसमें किसी की चाल नहीं चलेगी, किसी की पॉलिटिक्स, किसी की कोई ताकत घुसखोरी इसमें काम नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत खुश रहना है, छोटी बातों को दिमाग में आने ही नहीं देना है, आदत डाल लो, नथिंग, कुछ नहीं है, हल्का कर दो अपने को, इसको कहते हैं सरल चित्त, हर बात को सहज भाव से लेना है, वो है ही, कोई बात नहीं, हम इनसे बड़े हैं, हम महान हैं, हमारे साथ तो भगवान है। मान लो कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तुरंत संकल्प लाओ, अरे हमें तो भगवान ने सम्मान दिया है, मनुष्य इंसल्ट करे से क्या होता है, हमें मनुष्य से कुछ चाहिए ही नहीं, जिन्हें भगवान सम्मान दे रहा हो मनुष्यों का अपमान उन्हें क्या करेगा। संकल्प कर दो तुरंत, कोई चिंता आ जाए बाबा सामने खड़ा होकर कह रहा है बच्चे ये सारी चिंताएं मुझे दे दो, तुम तो बेफिक्र बात सारो मस्त रहो, हम तुरंत रिप्लेस करें, जो चीजें हमारी खुशी को नष्ट करती हैं उनको ज्ञान के संकल्प से हम साथ हटाने लगे, ये प्रैक्टिस ज्ञान की ऐसी पावरफुल पॉइंट्स हमें अपने पास रखनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग पर किसी भी चीज का इफेक्ट ना आए। मुझे ऐसी माताएं मिलती हैं बहुत अच्छी पावरफुल, मैं उन्हें देखता ही रह जाता हूँ, पढ़ी लिखी नहीं, गाँव की माताएं हमारे साथ तो बाबा है, मस्त रहती हैं। जिसके बच्चे मर गए ठीक है, बाबा के पास चले गए, इतना हिसाब किताब था हमारा, अब हमारे साथ तो बाबा है, वही मेरा बच्चा है, मस्त रहने लगी। थोड़ा सा सताया, जल्दी पूरा कर दिया, बाबा के बच्चे थे, चलो इतना ही कर्मों का हिसाब किताब था, पूरा हो गया। कोई जीवन भर रोते ही रहते हैं, मेरा तो पति चला गया, हाय मैं तो अकेली हो गई, कोई नहीं मेरा। 75 साल की माता, उसका पति मर गया, अब दुखी रहने लगी, डिप्रेशन में आ गई, मेरा कोई नहीं। बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हो गई। मैं कहा बाबा कहाँ चला गया तुम्हारा, 20 साल से ज्ञान में थी, बाबा तो है पर पति भी तो चाहिए, चाहिए तो जरूर। माताओं की अनेक बातें सुन के आश्चर्य तो होता नहीं, पर लगता है कि देखो आत्माओं की स्थिति कैसी हो गई है कि 75 साल में कम से कम 45 साल तो साथ रहे हैं, 45 से भी ज्यादा, पर 50 साल साथ रहे, तो इतना बमत हो गया है कि एक दिन भी उनसे अलग रहना मुसीबत लगती है। बाबा मुझे भी उठा लो, कहते अगले जन्म में फिर हम दोनों को पति पत्नी बनाना। ये भी माताओं के मुख से सुनता हूँ। मैं से विधि पूछती है कि कोई तरीका होता है हम दोनों फिर पति पत्नी बने। मैंने कहा योग से तो भी कर्म विनाश होते हैं, पति पत्नी बनने का ठेका नहीं मिलता। वंडरफुल बातें माताओं के बीच से मुझे सुनने, माताएं मतलब खुद बताती है मेरे को, तो सब सोचते हैं कोई विधि तो मिल ही जाएगी ना अगले जन्म में। मैं कहा बिल्कुल, पूरे 84 जन्म तुम पति पत्नी रहोगे। खुश हो जाती है माता, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो गया बस, चलो मस्त रहो, जो होगा वो तो अगले कल्प में देखना, अभी तो खुश रहो। तो हमें खुश रहना है ज्ञान के चिंतन के द्वारा, सवेरे का योग, बाबा के महावाक्य सबसे बड़ी चीज है ना हमारे पास। रोज अमृत वेले से ही खुशी हमारे साथ हो लेती है, उठते ही प्रभु मिलन होता है, खुशी के द्वार खुल जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। हम अपने भाग्य को याद किया करें, भाग्य को याद करें, चिंतन करना सोने तक, इस जन्म में ब्राह्मण बनने के बाद इन आँखों से क्या क्या देखा। भगवान को आँखों से नहीं देखा जा सकता, पर हमने तो देखा ना, हमें ऐसी आँखें मिल गई ना, अभी हमारी चर्म चक्षु नहीं रहे, दिव्य चक्षु हो गए, जिनसे हम भगवान को देखते हैं, अपने पांचों स्वरूपों को देखते हैं। तो विचार करते करते सो जाना, संगम युग पर क्या क्या देखा, क्या क्या मिला, और जो कुछ आज तक हो गया वो खेल पूरा हो गया, 5000 साल के बाद ही होगा, तो इतनी देर हम चिंता क्यों करें उसकी, उसको होने में तो फिर 5000 साल चाहिए, इसलिए अब उसकी चिंता की, उसकी चिंतन की कोई जरूरत नहीं। हर एक सुंदर चिंतन हमारे सामने है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता, तो अपने अपने पास सभी जो भी अच्छा काम करते हैं पुरुषार्थ में, खुद बैठकर शांति में 10 पॉइंट लिखना, मेरी खुशी की 10 बातें, हेडिंग ये, दूसरों की खुशी की नहीं, मैं हर एक अपने को जानता है ना, मेरी खुशी कहाँ गुम होती है और वहाँ मुझे क्या चिंतन करना है, मेरी खुशी की 10 पॉइंट बिल्कुल प्राइवेट रख लेना अपने पास, और लक्ष्य बना लें कि जब तक बाबा आएगा, आज क्या तारीख हो गई, 17, तो आगे दिन बाबा के बहुत है, बस आगे तो फटाफट हो रहा काम, प्रभु जी भी इंतजार कर रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नैनों के नूर फिर आए कि आए मेरे पास, उसे ही तो खुशी होती है ना, माँ बाप को भी खुशी होती है ना बच्चों से मिलके। तो बहुत अच्छे मिलन के दिन हमारे आ गए हैं, हम अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाकर इस सप्ताह धन लगा दें, और कुछ नहीं, न कोई देखना न सोचना, अच्छी स्थिति बनानी है ताकि बाबा का अच्छा मिलन हो जाए। ओम शांति।